तुम भक्ति की भक्ति का समुद्र हो और राम क्या है, धर्म की मर्यादा के हिमालय की समान है। मैं तुमसे कैसे कहूं जरा तुम्हारी बात मान करके और अयोध्या का राजा बन जाए, मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कर सकता? तू अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है और तुम अपने प्रतिज्ञा पर अटल है। मैं देखता हूं कि तुम भी सत्यकार है, जब उसी तरफ मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी सत्यकार है। नहीं, वो राजी नहीं। फिर उन्होंने सुनैना को कहा, सुनैना कौन? सुनैना जी को लेकर के महाराज जनक आए थे,
जनक की पत्नी
और सीता की मैया, उसके पास में गए। बोले जे तुम मेरी मैया हो, शास्त्र तो लगती हो किंतु मैया, तुम जरा राजा जनक से कहो तो उनकी बात को टाल नहीं सकते। वो जाकर के उनसे कही, अब जो कुछ भगवान कहेंगे अब कल सवेरे देखा जाएगा, जाकर के चुपचाप सो। महाराज भक्त को नींद नहीं आई, सवेरा हुआ, ऐलान हुआ जे आज ऋषियों के आश्रम में चित्रकूट में बड़ी भारी सभा बैठी, उसमें ऋषि महर्षि ब्रह्म ज्ञानी इत्यादि सब आएंगे और उसमें महाराज जनक भी आएंगे, उसमें देवता लोग आएंगे, ऋषि महर्षि सब लोग आएंगे, राम इत्यादि भी उसमें आएंगे और भक्त भी आएगा। उसमें भरत जी अपनी प्रस्तावना बोलेंगे और उधर से राम, उसमें निर्णय किया जाएगा रामचंद्र जी लौटे या काम। बड़ी भारी सभा है। महाराज जनक वशिष्ठ जी ने कहा, हमारी बुद्धि मोहित हो रही है, मैं नहीं समझता कि मुझे क्या कहना चाहिए, इसलिए आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, तत्व ज्ञानी हैं और आप सब विषय नहीं चुके हैं, देखने में राजा की तो आप महर्षियों में भी महर्षि हैं, यहां तक के मुक्त पुरुष हैं, आप कोई निर्णय दीजिए ये लोग माने। राम से पूछा गया, इनका निर्णय आप मानने के लिए बाध्य होंगे? जरूर मैं मान लूंगा। भरत जी से पूछा गया, उन्हें गए जरूर इनका निर्णय मान लिया। भरत जी उन्हीं इसीलिए उन पर निर्णय छुपा गया, ये आप जो कुछ कहेंगे ये लोग। राजा जनक जी अपने इष्ट देव को प्रणाम करके बोले, भैया ये भक्ति बड़ी बड़ी अद्भुत विलक्षण है, भक्ति का स्वरूप एक अद्भुत है, इसको समझना बड़ा भारी कठिन है तो सहज किंतु कठिन। भक्ति किसको कहते हैं? अन्य अभिलाषिका शून्य ज्ञान कर्माद जनावृतम अनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। अपने इष्ट देव को संपूर्ण रूप से समर्पण कर उनको प्रसन्न करने के लिए तन मन वचन से जो कुछ करते हैं, भावना के साथ में करते हैं, इसको भक्ति कहा जाता है। किंतु यदि उसमें अपने लाभ की, अपने स्वार्थ की कोई इतनी भी बूंद हो तो भक्ति से खाली हो जाती है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। देखो अब इसको लेकर के हमको चलना है। हमने इष्ट देव अपना कृष्ण बनाए और कृष्ण के प्रसन्न करने के लिए हमारी सारी चेष्टाएं होगी, तन से मन से वचन से। किंतु इसमें ये भाव एक आए, हे प्रभु मैं आपकी उपासना कर रहा हूं, मुझे धन संपत्ति कुछ मिल जाए तो ये क्या हो गया? अन्ना पिलास होकर इस भक्ति को दूषित कर दिया। एक घड़े दूध में एक बूंद यदि शराब मिल गई तो वो अपवित्र हो गया, एक बूंद यदि विष मिल गया तो सारा विष हो गया। उसी तरह से कृष्ण की भक्ति हम कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी कामना आ जाए, इसमें मेरी है प्रतिष्ठा मिल जाए। नारद जी को क्या हुआ? ये स्त्री हमको मिल जाए, किसी भी स्त्री की जरूरत भगवान की सेवा करने के लिए। हाँ हाँ मैं इसे लेकर के सेवा करा। अरे तुम करो तो पहले अपने आप। हनुमान जी ने ऐसा किया, जो जिस रूप में जैसे है वैसे ही भगवान की सेवा करे, जब गृहस्थ में है वहीं से सेवा करे, त्यागी है वहीं से सेवा करे, अब कोई नया कामना ना करे जब भक्ति हो गई, नहीं कर सकता। इसलिए मैं अब विचार करके कह रहा हूं, महाराज जनक कह रहे हैं भक्ति इसको कहते हैं कि अपने इष्ट देव के लिए प्रति समर्पित हो, तन मन वचन भावना के साथ में उसको प्रसन्न करने के लिए, जैसे वो प्रसन्न हो ऐसा कर्म करना चाहिए, वैसी बात बोलनी चाहिए, वैसा ही चिंतन करना चाहिए। इसको कहते हैं। देखो हराम मर्यादा के अवतार है। यह पर्वत कैसा है? हिमालय के समान। समुद्र में डूब जाएगा किंतु इधर उधर हिलेगा नहीं। भक्त का प्रेम ये सागर के समान है और हम का मर्यादा जो है कैसा है? हिमालय पर्वत के समान। भले ही उसमें डूब जाएगा किंतु सच से मस्त नहीं होगा। भक्त का प्रेम जीत गया, भक्त के प्रेम की जीत है। इसलिए मैं भक्त की तरफ से डिक्लेयर कर रहा हूं यह भक्त का प्रेम अगाध और अनंत है। उसमें राम की मर्यादा डूब जाएगी। प्रेम में मर्यादा नहीं दिखता, वो प्रेम दिखता है। गोपियां ये देखती कि मैं इनकी पत्नी हूं कि नहीं हूं, विवाह हुआ कि नहीं हुआ। सारा समाज हमारा विरोध कर रहा है, गुरुजन भी विरोध कर रहे हैं। जब प्रेम हुआ तो प्रेम इस तरह से ऐसा हो जाता है कि किसी की परवाह नहीं करता, वो प्रेम भी शुद्ध हो जाता है। भक्त का प्रेम ऐसा है। इसलिए मैं इनके तरफ में निर्णय दे रहा हूं कि इनकी जीत। सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए, भक्त बालाजी में बड़े प्रसन्न हो गए, ताली बज उठी। ये अब इनकी जीत हो गई कि इनकी बात राम मान करके चले गए। बोले ये सावधान एक बात और सुनो, भक्त की जीत हुई किंतु भक्त को यह देखना है कि राम को राज्य देने में प्रसन्नता है कि नहीं है, उनकी क्या इच्छा है। भक्त को यह देखना है कि राम क्या चाहते हैं, उसी के अनुसार उनको सब कुछ करना है। तो ये तो हुआ भक्ति। और यदि राम को कष्ट हो या दुख हो या जैसा भी, उसको विचार न करके जो मैं कह रहा अपनी जीत पर आराम हुआ है, ये आपको राज्य लेना ही है ना, मेरी जीत रहे, ये भक्ति नहीं। अब भक्त को ये विचार करना है कि ये जो करेंगे राम राजा हूं और राज्य ले लें और वो बल में न जाए, इसे राम को प्रसन्नता है कि नहीं है ये देखो। राम को देखे ये भक्त, भक्त की आंखें खुल गई और साथ ही साथ जनक के पैरों में गिर गए। उन्होंने उठाया, उठाने के बाद में कहा जा राम से पूछो, जिनको लौटने की इच्छा है ना, वन में जाने की इच्छा है ना, क्या है। राम से पूछा भैया तुम्हारी क्या मर्जी है, तुम किस में प्रसन्न हो। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे प्रेम के आगे परास्त हो गया, इसलिए मैंने राज्य लेना, मैंने सोचा कि हमारे विशेष से मैंने राज्य ले लिया, मैं ही राजा हूं। किंतु मेरी एक इच्छा है, उससे प्रसन्न होना। 14 वर्ष के लिए देखभाल तुम करो राजा, मैं तुम सेवक की भांति यहां रह करके उसकी प्रजाओं का शासन इत्यादि करो, जिससे हमको कोई चिंता की बात न रहे। और मैं पिताजी का आदेश पालन करके और फिर 14 वर्ष ठीक पूरा होते ही मैं आ जाऊंगा, एक सेकंड की देर नहीं होगी, मैं अपना राज्य लौटा दूंगा। बस भक्त की आंखों में आंसू आ गए, सभी लोग रोने लगे। कैसा ये प्रेम? यदि हो तो ऐसे ही भक्ति होती है। हमको ये देखना है हमारे आराध्य को, और आराध्य की तो बात की है, पहले हमारे गुरुदेव को किस विषय में प्रसन्नता है, हम अपनी जीत पर अड़ रहे हैं, ये देखो। हमको ये देखना है, उनका आदेश पालन करना ही ये भक्ति है। किंतु गुरु भी वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हमारा पैर दबा दो बेटा, हमको ये दे दो, हमको पैसे की कमी है, कुछ पैसे वसूल करके लाओ, तो हमको ये आरमान है। गुरु ऐसा नहीं, गुरु शब्द शास्त्र में पारंगत, अर्थात वेद उपनिषद शास्त्र में पारंगत, शिष्य की समस्त प्रकार की भूल को भय को दूर करने वाला और परमात्मा के प्रति भगवान की अनुभूति संपन्न होता है और संसार के प्रति विरक्त होता है। ये तीनों चीज मिलकर के एक बनता है भगवान की अनुभूति। समस्त शास्त्र में वो पारंगत और संसार से विरक्त हो तो ये गुरु का लक्षण है, यदि ऐसा नहीं है तो उत्तम गुरु नहीं मिला। उत्तम गुरु मिला कोटि कोटि में से बहुत दुर्लभ है। ये भगवान की ऐसी कृपा नहीं होने से नहीं होगी, किंतु इसके नीचे जो मध्यम अधिकारी है वो भी गुरु हो सकते हैं, यदि इसको रूल को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी अनुभूति नहीं हुई तो अभी उसको फॉलो कर रहे हैं, संसार से डिटैच हैं, वैराग्य नहीं चाहते हैं, कोई अर्थ रुपया पैसा प्रतिष्ठा किसी की कामना नहीं, किसी भी संसारी कोई भी लोग की जरूरत नहीं, भगवान के तत्व में पारदर्शी तो है कि तो अनुभूति नहीं है, तभी वो गुरु हो सकते हैं यदि वो सरेंडर्ड सोल हो, समर्पित आत्मा। ऐसे की जगत में लोग बहुत रेयर हैं जो शिष्य की समस्त प्रकार की कामनाओं को दूर कर और शुद्ध भक्ति में प्रशिक्षित कर दें और ऐसी शुद्ध भक्ति दे दें। कठिन है तभी है गुरु, जगत से गुरु लुप्त नहीं हो गए है, नहीं तो पृथ्वी रह नहीं सकती भक्तों के बिना। इसलिए यदि हमारी एकांतिक इच्छा होगी हमको ऐसे शुद्ध गुरु मिले जो भगवान के तरफ में हमको बढ़ा सकें, तब तो वो ऐसे गुरु को भगवान व्यवस्था कर देंगे। और यदि ऐसी ही नहीं है, हमको प्रतिष्ठा भी चाहिए, भगवान की भक्ति भी, एक गाल इधर खाएंगे एक गाल इधर खाएंगे, तो ठीक है ऐसा ही गुरु दे सकते, तो ऐसा ही देते हैं। किसी को शिव का अवतार बना देंगे, जैसे जाओ उनके पास, भगवान के बहुत से अवतार दिल्ली में पैदा हुए हैं उनके पास भी भेज देंगे, या और भी दक्षिण की तरफ में बहुत से भगवान के अवतार सब निकले हुए हैं, जो थोड़ा सा मैथमेरी गेम जान गए जादू जान गए बस वो भगवान बन गए। इसलिए एकांत शुद्ध रूप में यदि किसी की इच्छा जो भगवान की भक्ति हो तो शुद्ध गुरु को भगवान ही सब व्यवस्था करते हैं। वही भगवान पहले चैत्य गुरु के रूप में, पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु के रूप में, बहुत तरह के रूप धारण करते हैं। इस तरह से रामचंद्र जी की थोड़ी सी झांकी हमने दिखलाई, इसमें बिना भक्ति के वो भगवान का अवतार नहीं होता, तो अवतार एक उधर होता है एक हृदय में होता है। हम चाहते हैं कि राधा कृष्ण का अवतार हमारे हृदय में हो, राम से हम यही प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से यही प्रार्थना, सीता और भक्त जी से उनके परिचय, राधा और कृष्ण हमारे हृदय में आदृभूत। आप लोग भी ऐसा ही करें। अवतार अलग अलग नहीं है, एक चंद्र में 16 कलाएं होती हैं, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी एक ही चंद्र में है। चंद्र को ये कलाएं स्पष्ट नहीं करते, वो तो सबसे पूर्ण चंद्र है, किंतु पृथ्वी की छाया उनको कला जैसे दिखलाती है, द्वितीया है तृतीया है चतुर्थी, चंद्र में उसका कोई भी संपर्क नहीं, ऐसे भगवान में कोई भी ऐसा भेद नहीं। भक्ति के साथ समझे से अधिकार से ऐसे भगवान के रूप में, यहां तक कि ब्रह्म परमात्मा और भगवान के रूप में भी ऐसा देखते हैं अधिकारी के रूप में, किंतु वही स्वयं भगवान है कृष्ण है। समस्त अवतारों का मूल, समस्त जितने प्रकार के ब्रह्म परमात्मा इत्यादि सबके मूल वो कृष्ण है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सत् कारण कारण। यदि कोई सुखी होना चाहते हैं इस जीवन में, शुद्ध गुरु वैष्णव का पदाश्रय करके राधा कृष्ण के एकांत भक्त में चले, और कोई कामना कोई एम्बिशन कोई इच्छा किसी प्रकार की भगवान से प्रार्थना करें, वो हमारे बल बुता की बात नहीं, हम मन के अंदर में काबू हो जाते हैं, कभी काली हो जाते हैं कभी खुश हो जाते हैं। प्रभु की बात है अपने किसी परिकरों को भेजें जो हमारी सब इच्छाओं को दूर कर दें, बस राधा कृष्ण की एकांति भक्ति हो बस ये इच्छा। यही प्रार्थना करके मैं अपने वक्तव्य को आज समाप्त करता हूँ। अतिथानं वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो फिर आती के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे Krishna Hare Hare।